नमस्कार भारत, 16 दिसंबर सोमवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। जामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर रात भर विरोध प्रदर्शन। जामिया के अंदर पुलिस कार्रवाई के दौरान क्या बोले छात्र?
हॉस्टल में रहते हैं कि हाथ ऊपर करो, हाथ लाए वहाँ पे, हमें क्रिमिनल्स की तरह लाए निकाल कर, ऊपर से कह रहे हैं कि मिल गई तुम्हें आजादी,
अब दिलाते हम तुम्हें आजादी।
जाधवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने जामिया छात्रों के समर्थन में निकाली रैली।
दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन के बाद यहाँ जाधवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
उसतुल्लाह खां की डायरी और खेल और खिलाड़ी भी होगा, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत की राजधानी दिल्ली में रात भर सैकड़ों छात्रों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप था कि पुलिस रविवार शाम बलपूर्वक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में घुस गई थी और छात्रों के साथ मारपीट की। विवादित नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली के बाद ये घटना हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस घटना के दौरान 50 छात्रों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें रिहा कर दिया गया है। मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान हुए समझौते की काफी आलोचना हो रही है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इनमें कड़े कदम उठाने की बात नहीं है। समझौते में सिर्फ ये कहा गया है कि अमीर देश अगले साल के अंत तक उत्सर्जन में कमी के लिए नई योजना तैयार करेंगे। सर डेविड किंग 2015 में हुई पेरिस जलवायु वार्ता में ब्रितानी सरकार के प्रतिनिधि थे। उन्होंने बीबीसी से कहा कि अमरीका के पेरिस समझौते से अलग होने के फैसले ने मैड्रिड के समझौते पर असर डाला है।
If the United States is not backing an agreement that is meaningful,
अगर अमरीका किसी अहम समझौते का समर्थन नहीं करता तो बाकी दुनिया के लिए किसी समझौते तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे डर है कि जब तक ट्रंप अमरीका में है और राष्ट्रपति बोल्सोनारो ब्राजील में है, तब तक उन सभी देशों को सहमत करना बहुत मुश्किल है। ये थे सर डेविड किंग, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कांगो गणराज्य के अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी किवू प्रांत के बेनी शहर में देर रात हुए विद्रोही हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। हमले में शामिल लड़ाके एक मिलिशिया समूह से ताल्लुक रखते हैं, जिसने पिछले 5 सालों में सैकड़ों आम नागरिकों की जान ली है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने कहा है कि अगर अमरीका उन पर और प्रतिबंध लगाता है तो वो तुर्की के इंजरलिक एयरबेस से अमरीकी सेना को हटाने पर विचार कर सकते हैं। अगले हफ्ते अमरीकी संसद में तुर्की पर प्रतिबंध लगाने पर विचार होगा, क्योंकि तुर्की ने हाल ही में रूसी मिसाइल सिस्टम खरीदा है। लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। ये प्रदर्शनकारी संसद के पास एक चौराहे पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी मोना फवास ने बीबीसी को बताया,
It was a very peaceful protest. Everyone was singing chants that we are one people.
बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। सब लोग नारे लगा रहे थे कि हम एक हैं, हम शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। और तभी थोड़ी धक्का मुक्की हुई, कुछ हिंसा नहीं हुई, लेकिन वहां बहुत सारी पुलिस आ गई। उन्होंने हम पर आंसू गैस दागना शुरू कर दिया और इस तरह के बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं थी। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू ने कहा है कि उनकी सरकार ने अमरीका से अपने राजदूत को वापस बुलाने के लिए कहा है। दरअसल अमरीका के राजदूत ने गे रिलेशनशिप में रहे 2 पुरुषों को जेल भेजने की आलोचना की थी। डेनियल फुट ने कहा था कि वो हैरान रह गए कि जब 2 पुरुषों को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। फ्रांस से आई रिपोर्टों के मुताबिक उस पूर्व पुलिस कर्मी को प्रत्यर्पित किया जाएगा जिन पर अर्जेंटीना की सैन्य तानाशाही के वक्त उत्पीड़न और हत्या का आरोप है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। ये आवाज़ें उन छात्रों की हैं जो बीती रात दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कल दोपहर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया नगर से विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें छात्र और आम लोग भी शामिल थे। ये मार्च सरायजुलेना इलाके में हिंसक हो गया। इस दौरान तकरीबन 3 बसों को जलाया गया और 1 दमकल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया कैंपस में घुसकर कार्रवाई की, जिसके बाद इस कार्रवाई के खिलाफ बीती रात छात्र, आम लोग और कई नेता दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। सुनिए पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी से।
दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए यूनिवर्सिटी के कई छात्र और उनके अभिभावक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। इनके समर्थन में जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी पहुंचे। बीती रात से ये लोग पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का गुस्सा बढ़ने के साथ ही सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, सीपीआई नेता डी राजा और सीपीएम नेता वृंदा कराज छात्रों से मिलने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे।
हम कभी सोच नहीं सकते हिंदुस्तान में प्रिजनर्स ऑफ वॉर जैसे स्टूडेंट्स हाथ उठाकर यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस की लाठियों से वो लाठी मार मार कर निकाल रहे। ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर है क्या? आप उनके हाथ उठाकर उनको हटा रहे, ये शर्म की बात है।
कांग्रेस ने अलग से एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उसने मोदी सरकार पर छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा,
नौजवानों के साथ इस सरकार ने पिछले 5 सालों में अगर इनका इतिहास देखें, नौजवानों पर बर्बरता पूर्वक हमले हुए हैं। विशेष तौर पर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से इस सरकार की कोई अजीब सी दुश्मनी, कोई अजीब सा बैर रहा। आप जेएनयू को देखिए, आप हैदराबाद की यूनिवर्सिटी को देखिए, आप अलाहाबाद के विश्वविद्यालय को देखिए, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देखिए, और अब आज जो शाम से हो रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों पर जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, हॉस्टल्स में घुसकर अंदर टियर गैस शेलिंग हो रही है, आंसू गैस हॉस्टल के कमरों में और लाइब्रेरी में चलाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही, किस तरह की सरकार है।
इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पूरी घटना के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया।
आम आदमी पार्टी के मुखिया के इशारे पे हुआ है सब कुछ, क्योंकि जब उनका बयान भी आया तो ये आया कि प्रोटेस्ट जारी रखो, उनको ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लगता है। अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें, और आप हिंसा फैलाएंगे सड़कों पे, लोगों को उकसा करके। एक बड़ी साजिश थी ये दंगे की, वो तो मैं तो देख रहा हूँ, अभी पता कर रहा हूँ क्या क्या हुआ है। इस पे कानून को अपना सख्त रवैया अपनाना चाहिए, किसी को भी ऐसी सड़कों पे नंगापन करने की छूट नहीं होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस तरह के आरोपों को बेतुका बताया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा,
भारतीय जनता पार्टी की ये ओछी राजनीति का तरीका है, जब भी वो चुनाव हारने लगते हैं ऐसे रास्ते अपनाते हैं। भाजपाइयों को सच से वाकिफ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी अहिंसा में यकीन रखने वाली एक लोकतांत्रिक संवैधानिक मर्यादाओं में काम करने वाली पार्टी है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं।
दिल्ली में बीती रात ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिन चढ़ने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
हिंसक प्रदर्शनों के बाद जामिया के 10 से अधिक छात्रों को इलाज के लिए हॉली फैमिली अस्पताल ले जाया गया था, वहीं 50 छात्रों को हिरासत में लिया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया के नजदीक सरायजुलेना में हुई हिंसा का जामिया प्रशासन और छात्रों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि बस जलाने और तोड़फोड़ करने में छात्र शामिल नहीं थे। जामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने कैंपस में दिल्ली पुलिस के बिना अनुमति घुसने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को काफी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा,
बहुत चोट लगी है कई बच्चों के, स्टाफ के भी लगी है, जो हमारे जो बुल्स हैं उनके भी लगी है, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, और हमारा बहुत सारा सामान, हमारी प्रॉपर्टी ये खराब हुई है, बहुत शीशे टूटे हैं, और जिसके टूटने की जरूरत नहीं थी, मगर जब लाठी वगैरह चलती है तो शायद टूटते होंगे, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है। मगर अफसोस है मुझे बच्चों का, ऐसे बच्चों के जो चोटें लगी हैं उनको उनके लिए ان کے لیے بڑا شاکنگ تھا, بہت ہیرسمنٹ کا تھا, بہت ہیومیلیٹنگ تھا ان کے لیے.
ہنسک گھٹنا میں 10 پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں. دلی پولیس کے پروکتا ایم ایس رندھاوا نے کل ہنسک ہوئے پردرشن کا بیورہ دیا. ان کا کہنا تھا کہ پردرشنکاری چھاتروں اور عام لوگوں پر قابو پانے کے لیے سرائے جلینا میں آنسو گیس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس سمے حالات قابو میں ہیں. انہوں نے کہا
ٹیئر گیس یوز کر کے ان کو واپس وہاں سے کھدیڑا ہے. مین وائل جب سرائے جلینا پہ آئے ہیں اور وہاں سے ان کو پیچھے کی طرف جامعہ کی طرف پش کر رہے تھے, تو یہ جامعہ یونیورسٹی سے بھی کچھ لوگوں نے پتھر وغیرہ پولیس پہ پتھراو کیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی ان کو ریموو کر کے ابھی بالکل جو سچویشن ہے انڈر کنٹرول ہے. اور آپ کے مادھیم سے میں تمام جتنے بھی ہمارے دلی واسی ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نارملی جو ریومرز ہیں اس پہ نہ جائیں, سچویشن انڈر کنٹرول ہے اور دہلی پولیس پوری سچویشن پہ نظر رکھی ہوئی ہے. سوشل میڈیا ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور ہمارے پاس سفیشنٹ فورس ہے اور پراپر ارینجمنٹ.
جامعہ وشودیالے میں پولیسیا کاروائی کی علی گڑھ مسلم وشودیالے, جادو پور وشودیالے اور حیدرآباد کے مولانا آزاد راشٹریہ اردو وشودیالے کے چھاتروں نے نندا کی ہے اور ساتھ ہی بیتی رات ویرودھ پردرشن بھی کیا ہے. علی گڑھ میں انٹرنیٹ سیوا سوموار رات 10 بجے تک بند کر دی گئی ہے. پولیس اور پردرشنکاریوں کے بیچ جھڑپ کے بعد پولیس کرمیوں نے جامعہ کے کیمپس میں گھس کر کاروائی کی. اس دوران بی بی سی سنواداتا سلمان راوی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چھاتروں سے بات کی. کیا کہنا تھا چھاتر اور چھاتراؤں کا, ذرا سنیے.
میرے ساتھ یہاں پر جامعہ کی پڑھنے والی بہت ساری چھاترائیں بھی موجود ہیں جو اپنے ہاسٹل تک نہیں جا پا رہی ہیں کیونکہ علاقے کی ناکے بندی کی جا چکی ہے, سڑک پہ روڑے پڑے ہوئے ہیں, پولیس بندوبست ہے. آپ لوگ پریشان ہیں, ڈرے ہوئے ہیں لگتا ہے؟
ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں لیکن پریشان ضرور ہیں کیونکہ ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا ہے کہ ابھی ہم کس کنڈیشن میں ہیں. ہمیں ہاسٹل جانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں پر پولیس نے جیسے کر رکھا ہے. اس کے علاوہ ہماری میری بہنیں یہاں پر کیمپس کے اندر یہاں پہ لاکڈ ہے اور ابھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ پولیس انہیں کس طریقے سے نکال کے باہر لائے گی.
آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟
مطلب یہاں کا وہی سچویشن بہت ہی خراب ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں, ہم لوگ کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا. آدھے بچے
اندر تو ہنسا ہو رہی ہے, لاٹیاں چل رہی ہیں, آپ جا کے کیا کیجیے گا وہاں؟
ہمیں ہاسٹل جانا ہے, ہمیں ہاسٹل دروازہ ایٹ لیسٹ میں کھول کے ہم بہت سمپل پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہم کچھ نہیں کر رہے تھے اور یہ فالتو میں آ کے ہمارے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں, ٹیئر گیس بھیجے, کس کہاں کا یہ نیا ہے؟
آپ بتائیے, آپ یہ بات بتائیے ابھی ہمیں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ یہ رات کے ٹائم یہاں پہ شرابی گھوم رہے ہم نے دیکھا اور ہمیں لڑکیوں کو یہاں پہ ہمیں گھر نہیں جانے دے رہے, ہم کیا کریں؟ ہمیں ابھی وہاں سے کوئی نہیں ہے, ہاسٹل میں رہتے ہیں, ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ
لائے وہاں پہ, ہمیں کرمنلز کی طرح لائے نکال کر, اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ مل گئی تمہیں آزادی,
اب دلاتے ہم تمہیں آزادی,
کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اوپر کر کے جاؤ. ہم لوگ لائبریری میں تھے, وہاں گھس کر ان لوگوں نے لاٹھی چارج کر کے ہم لوگوں کو باہر کیا اور پھر باہر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر جاؤ, لگ رہا ہے کہ ہم کوئی کرائم کر لیے.
There is police in the campus, everyone should know that also. There is police in the campus, in a educational campus.
اسٹوڈینٹس کو احتجاج ہے کہ اعتراض ہے کہ آپتی ہے کہ پولیس کیمپس کے اندر نہیں آنی چاہیے, یہ چھاتروں کا جو ہے ان کی آپتی ہے. لیکن ابھی بھی حالات سدھرے نہیں ہیں, دیر رات کا وقت ہو رہا ہے اور لوگ یہاں پر جو چھاتر ہیں وہ بڑے چنتت ہیں. سلمان راوی, بی بی سی, جامعہ.
ہنسک پردرشنوں کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس کاروائی. ادھر ناگرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف پچھم بنگال میں ہنسک پردرشن جاری ہیں. کل ہاوڑا, مرشید آباد اور ندیا میں ہنسک گھٹنائیں دیکھنے کو ملی. ساتھ ہی 6 ضلعوں میں انٹرنیٹ پر روک لگا دی گئی ہے. اس گھٹنا پر ادھک جانکاری کے لیے میں نے کولکاتہ میں موجود ہمارے سہیوگی پی ایم تیواری سے بات کی.
بیتے 2-3 دنوں سے تو راجیہ میں خاص کر دکشن بنگال میں ہنسا چل رہی تھی اور اسم کی طرح اس میں چھاتر شامل نہیں تھے, لیکن کل دلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ وشودیالے میں چھاتروں کے پردرشن کے بعد یہاں جادو پور وشودیالے کے چھاتروں نے بھی ناگرکتا قانون کے خلاف پردرشن کیا ہے, کیندر سرکار کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اسے واپس لینے کی مانگ کی ہے. اور اس کے علاوہ پورے راجیہ میں 3rd دن لگاتار رویوار کو ہنسا اور آگجنی جاری رہی ہے اور پردرشنکاری خاص کر ریلوے اسٹیشنوں اور ریلوے کی پٹریوں, ٹرینوں اور ریلوے کی سمپتیوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں. رویوار کو بھی کم سے کم 3 اسٹیشنوں پر انہوں نے توڑ پھوڑ کی, آگجنی کی اور راجیہ میں ریل ویوستھا کہا جا سکتا ہے پوری طرح ٹھپ ہو گئی ہے. شنیوار کو 1 درجن سے زیادہ ٹرینیں کینسل تھی, پھر اس کے بعد رویوار کو بھی پورو ریلوے نے بھی اپنی کئی ٹرینیں کینسل کر دی اور دکشن پورو ریلوے نے بھی کینسل کر دی. اس سے خاص کر چھٹی کے اس سیزن میں جو ٹورسٹ گئے ہیں گھومنے دارجلنگ یا اتر بنگال کی پہاڑیوں پہ, جگہ جگہ ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے بھی سرکار ویوستھا کر رہی ہے. لیکن کل ملا کے حالات ایک دم गठबंध हो गए हैं सारे और लोग फंसे हुए हैं और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
ये कहां कहां हिंसा हुई है, किन किन इलाकों में हुई है और अब तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है?
कई इलाकों में, खासकर नदिया, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और हावड़ा जिलों में अल्पसंख्यक बहुल जो इलाके हैं वहीं ज्यादा हिंसा देखने को मिली है और कई जगह लोगों ने गलियां निकाली, तोड़फोड़ किया, नेशनल हाईवे पे टायर जला के और सड़क जाम कर दी। तो कुल मिला के हालात बेहद खराब हैं और पुलिस प्रशासन ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हालात बिगड़ने के बाद रविवार रात को ममता बनर्जी के घर पे एक आपात बैठक हुई जिसमें गृह सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और दूसरे आला अधिकारी मौजूद थे। तो ममता ने इसमें प्रशासन को निर्देश दिया कि हालात पर काबू पाने के लिए कड़ा रुख अपनाया जाए, लेकिन फिर भी अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इस बीच अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल देर रात राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राज्य में हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की। तो उसके बाद राज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आज सुबह 10 बजे तक राजभवन बुलाया है। धनखड़ का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने मौजूदा हालात की जानकारी लेने के लिए उन अधिकारियों को राजभवन बुलाया है।
ममता बनर्जी भी एक रैली करने वाली हैं, वो क्यों हैं और किस लिए हैं?
हाँ, ममता बनर्जी ने दो दिन पहले ऐलान किया था कि वो नागरिकता कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी और हिंसा जारी रहने के बीच बार बार यही कहती रही है। अब सोमवार से वो पहली बार सड़कों पर उतरेगी। आज कोलकाता में उनके नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर एक महारैली आयोजित करेगी।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन जारी। अधिक जानकारी दे रहे थे पीएम तिवारी।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
श्रोताओं, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। अखबारों के साथ स्टूडियो में गुरप्रीत सैनी मौजूद हैं। जी गुरप्रीत
जी, द हिंदू अखबार के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें 60 लोग घायल हो गए हैं। वहीं असम में जारी नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
और जनसत्ता का शीर्षक है इसी पे, असम हिंसा, गुवाहाटी में 2 और लोगों की मौत बताई जा रही है।
जी, दिल्ली तक पहुंची आग और जो प्रदर्शनों की आग है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जो जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने जो प्रदर्शन किया और जो कुछ भी कल हुआ उसको लेकर खबरें सभी अखबारों में हैं
और सब 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 जगह, मतलब शीर्ष खबर वही है।
जी, और अखिल गोगोई पर UAPA के तहत केस दर्ज, ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स में। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना दे रहे RTI कार्यकर्ता अखिल गोगोई पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर ये आरोप है कि नागरिकता कानून को लेकर लोगों को हिंसा के लिए उन्होंने उकसाया और UAPA के तहत केस दर्ज होने के बाद अखिल गोगोई पर एक आतंकवादी की तरह मुकदमा चलेगा।
जी, इसके अलावा एक खबर हर जगह है गुरप्रीत, मैं बताना चाहूंगा, अभिनेत्री पायल रोहतगी को जो पुलिस हिरासत में लिया गया ये भी एक खबर है। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी और वो अपने इन सब विचारों के लिए आजकल बहुत सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जानी भी जाती हैं, तो उनको हिरासत में लिया गया था। तो ये खबर आज के हर अखबार पर है। इसके अलावा सेंगर मामला जो था, उन्नाव बलात्कार कांड वाला, उसमें आज फैसला आ सकता है।
2017 का ये मामला है जिसमें एक लड़की को अपहरण किया और रेप किया गया, ऐसा उन पे आरोप था। और द इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दिख रही है कि प्याज के बाद अब जो दूध है, दूध के जो दाम बढ़ गए हैं वो सरकार का नया सिरदर्द बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमूल और मदर डायरी ने 2 रुपये प्रति लीटर हर पाउच पे जो है दाम बढ़ा दिया है।
जी।
इसके अलावा बिहार में NRC की जरूरत नहीं, ये कहा है JDU ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले ही कहा था कि पूरे देश में NRC लागू होकर रहेगी और उसके अगले दिन यानी रविवार को BJP की सबसे बड़ी सहयोगी JDU ने कह दिया कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में। और इसके अलावा अवैध बांग्लादेशियों की सूची मुहैया कराएगा भारत, ये कहा है बांग्लादेश ने। वो उन्होंने कहा है भारत को कि वो मुहैया कराए अगर उनके पास ऐसी कोई सूची है और वो उन्हें फिर वापस लेने के लिए मंजूरी देंगे।
एक बयान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आज हर अखबार में है, जैसे जनसत्ता ने उसको शीर्षक बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कपड़ों से की जाए उपद्रवियों की पहचान, ये आज हर अखबार पे है। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सैनी। श्रोताओं बढ़ते हैं आगे। नागरिकता कानून में अगर संशोधन 70 साल पहले हो गया होता तो क्या होता, चलिए यही जानते हैं इस्लामाबाद से आई उसतुल्ला खां की इस डायरी में।
जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री और विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। 1948 में कायद आजम के देहांत के बाद मंडल जी की प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से नहीं बनी और वो 1950 में पाकिस्तान छोड़ के कलकत्ते जा बसे। सज्जाद जहीर, जिन्हें सब वामपंथी बनने भाई कहते थे, मार्च 2048 में पाकिस्तान आ गए ताकि नए देश में कम्युनिस्ट पार्टी को व्यवस्थित कर सकें। फिर बन्ने भाई फैज अहमद फैज के साथ पिंडी साजिश केस में पकड़े गए और 4 वर्ष जेल में बिताने के बाद पंडित जी की कोशिशों से वापस 1955 में भारत लौटा दिए गए। हिंदुस्तानी संगीत के महान दिग्गज उस्ताद बड़े गुलाम अली खान विभाजन के बाद पाकिस्तान चले आए, परंतु जी ना लगा और 10 वर्ष बाद 1957 में पाकिस्तान से दोबारा भारत लौट गए। पंडित जी और मुरारजी डिसाई की कोशिशों से बड़े गुलाम अली खां की नागरिकता फिर से बहाल हो गई। बड़े गुलाम अली खान को 1962 में पद्म भूषण मिला और 1968 में उनका देहांत हो गया। बड़े गुलाम अली खान पे जितना हक भारत का है उतना ही पाकिस्तान भी जताता है। अपनी मर्जी से पाकिस्तान आए, फिर अपनी खुशी से भारत में बस गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कुरतुल ऐन हैदर का शुमार हिंदुस्तान पाकिस्तान में उर्दू के सबसे बड़े कहानी और उपन्यासकारों में होता है। 1947 में ऐनी आपा दिल्ली से कराची चली गईं और सूचना विभाग में मुलाजिम हो गईं। 1959 में उनका नावल आग का दरिया कराची से छपा, जिसे उर्दू का सबसे बड़ा नावल कहा जाता है। मगर ऐनी आपा का जी भी पाकिस्तान में नहीं लगा और 1960 में वो फिर से भारत में जा बसी। पंडित जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटी घर लौट ही आई। 2005 में ऐनी आपा को भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा और 2 वर्ष बाद ऐनी आपा का नोएडा में देहांत हो गया। मैं सोच रहा हूं कि अगर पंडित नेहरू की जगह नरेंद्र मोदी होते और भारतीय नागरिकता के कानून में तब्दीली पिछले हफ्ते की बजाय 70 वर्ष पहले ही हो जाती तो सज्जाद जहीर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और कुरतुल ऐन हैदर अपने नामों की वजह से कभी भारत वापस ना जा सकते। जोगिंदर नाथ मंडल को अलबत्ता भारत लौटते समय कोई दिक्कत ना होती। लंदन में रहने वाले नेता अल्ताफ हुसैन कई बार भारत में बसने की ख्वाहिश बता चुके हैं, मगर अब शायद उनकी ये ख्वाहिश तभी पूरी हो सकती है अगर वो विक्टर अल्ताफ, अल्ताफ दास, अल्ताफ सिंह, अल्ताफ वांगड़ू या अल्ताफ रुस्तम जी कराची वाला बन जाए। अच्छी खबर यह है कि मेरा स्कूल फैलो कन्हैया लाल राजकुमार दिल्ली में जूतियां चट खाने के बाद वापस चला आया है। अभी उसकी पाकिस्तानी नागरिकता बाकी है और उसे कन्हैया हुसैन बनने की आवश्यकता भी नहीं। 10 वर्ष पहले वो सुकून की तलाश में हमेशा हमेशा के लिए भारत चला गया था। अब यही कन्हैया लाल सुकून की तलाश में हमेशा हमेशा के लिए फिर से पाकिस्तान लौट आया है।
उज़तुल्लाह खां की डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। वेस्ट इंडीज के शाई होप और शिमरॉन हेटमायर ने अपने शतकों की बदौलत अपने कप्तान किरेन पोलार्ड के टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के फैसले को सही साबित किया और भारत को कल चेन्नई में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य था, जो उसने शिमरॉन हेटमायर के 139 और शाई होप के नाबाद 102 रन के सहारे 47.5 ओवर में ही केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारत ने ऋषभ पंत के 71 और श्रेयश अय्यर के 70 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 287 रन बनाए। और अब समीक्षा। डोप के डंक ने डसा रूस को हुआ टोक्यो ओलंपिक से बाहर, नहीं खेल सकेगा 4 साल तक विश्व चैंपियनशिप और दुनिया भर के खेल टूर्नामेंट। भारत के एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता मुक्केबाज सुमित सांगवान और विश्व पदक विजेता राइफल निशानेबाज रवि कुमार भी डोप के दोषी पाए गए।
मैंने 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स किया और मैं भारतीय दल के साथ एज चिकित्सक गया था, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा वाकया, ऐसा हादसा नहीं हुआ। रशिया की एक ऐसा नेशन है कि जो पावर हाउस माना जाता था बहुत सारे स्पोर्ट्स में, लेकिन 2015-2016 की रिपोर्ट्स में ये देखा गया कि ये इंस्टीट्यूशनल डोपिंग करते थे। और वाडा की जो 12 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो देखा, जिसमें जो प्रेसिडेंट वाडा क्रेग रीडी ने अभी पीछे स्विस सिटी जो लुजान है वहां पर ये डिसीजन लिया कि भाई इस देश को 4 साल के लिए बैन किया जाए, तो वो ऐसे ही नहीं बैन कर दिया उठा के, क्योंकि इन्होंने टेम्पर किए थे एविडेंस को। डोपिंग के जो रिपोर्ट्स थी, फाइल्स डिलीट की गई, फेक एविडेंस प्रोवाइड किए गए, सैंपल स्वाइप किए गए, पकड़े गए, इस तरह की हरकतें सामने आई।
ये विस्तार से जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन, जो भारत के खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े रहे। उनके अनुसार रूसी खिलाड़ी संगठित रूप से खेलों में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन पदक जीतने के लिए कर रहे थे, जिसकी अनदेखी वाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी नहीं कर सकती थी। अभी ये खबर ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि भारत के मुक्केबाज सुमित सांगवान का नाम भी डोपिंग में उछला। उनके साथ ही निशानेबाज रवि कुमार का नाम भी सामने आया। पूर्व ओलंपियन मुक्केबाज राजकुमार सांगवान भी इससे हैरान रह गए।
पर्सनली मैंने सुमित से बात की थी क्योंकि उसका सैंपल फेल हुआ है, बट उसके ऊपर अभी बैन नहीं लगा है, शायद बचने के चांस हैं, लेकिन इतना मैच्योर बॉक्सर होने के बाद एक प्रिकॉशन रखनी चाहिए थी सुमित को। वो बताता है कि जब स्टेट हो रही थी तो उस समय कुछ ऐसी दवाई बीमारी की वजह से ली गई, लेकिन फिर भी गलत है।
वैसे मुक्केबाज सुमित सांगवान ने डायुरेटिक और निशानेबाज रवि कुमार ने प्रोप्रेनोलोल का इस्तेमाल किया। सांगवान 91 किलो भार वर्ग के मुकाबले 81 किलो भार वर्ग में वापसी की तैयारी में थे। डॉक्टर जवाहरलाल जैन समझाते हैं दवाओं के खेल और मेल का परिणाम।
डायुरेटिक की वेट कैटेगरी में इस्तेमाल होती है, जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, वेट लिफ्टिंग है, और इसका पर्पज ये होता है कि ये खिलाड़ी लोअर कैटेगरी वेट में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे कोई 56 किलोग्राम में और वो 54 में या 52 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो डायुरेटिक बेसिकली पेशाब ज्यादा लाते हैं, तो ज्यादा पेशाब आने से बॉडी वेट थोड़ा कम हो जाता है, तो वो लोअर कैटेगरी में कम्पीट कर सकता है। ये दवाइयां 48 से 72 घंटे तक ली जाती है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, जैसे सांगवान के केस में देखा गया। जहां तक दूसरी ड्रग का सवाल आपने बोला प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर नॉर्मली आर्चरी, शूटिंग, गोल्फ इस तरह के खेलों में ली जाती है, और आर्चरी और शूटिंग में ये दवाई कॉम्पिटिशन के दौरान भी और प्रतियोगिता के अलावा भी, मींस आउट ऑफ कॉम्पिटिशन भी, ये बैंड है। पर्पज इसका ये होता है कि ये प्रोप्रेनोलोल को बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी में कहते हैं, जैसे जो रवि कुमार जो नेशनल शूटर जो डोमेस्टिक चैंपियनशिप में पकड़ा गया, इसका बेसिक मकसद ये होता है ये पल्स को रिड्यूस करता है। ट्रिगर फिंगर जिस पर आप रखते हैं राइफल का, वो तो हिलती नहीं है, कांपती नहीं है, तो जब पल्स कम होगी, टेंशन कम होगी, तो ट्रिगर फिंगर बहुत स्टेडी हो जाएगी, तो आप बेटर शॉट मार सकते हैं, निशाना है वो बहुत बेहतर होगा।
ऐसा निशाना भी क्या बेहतर जो खेल से बाहर कर दे। देखना है रूस से दुनिया भर के खिलाड़ी क्या सबक लेते हैं। उधर चीन में समाप्त हुए बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स का फाइनल कल पुरुष एकल वर्ग में जापान के केंटो मोमोता ने जीता। महिला एकल वर्ग का फाइनल चीन की चेन युफेई ने जीता। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली में रात भर सैकड़ों छात्रों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस रविवार शाम बलपूर्वक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में घुस गई थी और छात्रों के साथ मारपीट की। मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान हुए समझौते की काफी आलोचना हो रही है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें कड़े कदम उठाने की बात नहीं है। समझौते में सिर्फ ये कहा गया है कि अमीर देश अगले साल के अंत तक उत्सर्जन में कमी के लिए नई योजना तैयार करें। कांगो गणराज्य के अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी किवू प्रांत के बेनी शहर में देर रात हुए विद्रोही हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर अमेरिका उन पर और प्रतिबंध लगाता है तो वो तुर्की के इंजिलिक एयरबेस पर अमेरिकी सेना को हटाने पर विचार करेंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे अब अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।